किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। जिन खोजन तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, अर्थात कुछ पाने के लिए जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वो चीज जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमें डेफिनेटली मिलती है। मेरे इस पॉडकास्ट की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। हमेशा अच्छी कहानियों की तलाश में रहती हूँ, सो दैट आई कैन ब्रिंग द बेस्ट स्टोरीज फॉर यू ऑल। जैसा कि आप सबको मालूम है, किस्सा कहानी बाय निधि बासु का 10th सीजन रीजनल लैंग्वेज स्टोरीज को डेडिकेटेड है। इसमें पूरे भारत वर्ष के अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां हैं जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इन कहानियों को आप तक लाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा ये विशाल देश, जो एक्चुअली एक सब कॉन्टिनेंट है, तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने क्षेत्र हैं, जितने रीजन्स हैं, उतनी भाषाएं हैं और हर लैंग्वेज का लिटरेचर उतना ही रिच और वेल डिवेलप्ड है। इन सब भाषाओं को समृद्ध बनाया उन लेखकों और कवियों ने जिन्होंने साल दशक अपना अधिकतर पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया और अपने क्षेत्र, अपने समाज की छवियां अपनी लेखनी के माध्यम से सबके सामने लाए। मेरा ऐसा मानना है दैट अ ग्रेट स्टोरी कैप्चर्स अवर इमेजिनेशन विच एवर लैंग्वेज इट मे हैव बीन रिटन इन ओरिजिनली। इसीलिए बहुत अच्छी अनुदित कहानियां पढ़ने पर लगा कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस से ट्रांसलेटेड कहानियों का वाचन किया जाए तो आप सबके लिए कहानियों का कितना सुंदर रंग बिरंगा बुके तैयार हो सकता है। तो बस मैंने स्टार्ट की बहुत गहरी रिसर्च और नतीजा ये कि पिछले कुछ महीनों बस कहानीकारों की बनाई दुनियाओं में घूमती रही हूँ। बट आई कांट टेल यू हाउ एनरिच्ड आई फील एंड हाउ ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री, जहाँ के कोने कोने में ज्ञान का, अनुभूति का भंडार है और लेखकों की अपने परिवेश की अभिव्यक्ति यानी अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्रेस करने की महिमा अपरंपार है। अब आज की ही कहानी को लीजिए, ये एक बहुत बहुत स्पेशल कहानी है। इतनी स्पेशल कि मुझे लगता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस कहानी के लेखक के बारे में। भगवती चरण पानीग्रही एक उड़िया लेखक और राजनीतिज्ञ जिनका जन्म 1907 में हुआ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और नेताजी के निकटतम सहयोगी थे। अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने 12 उड़िया कहानियां लिखी। 1943 में 36 वर्ष की आयु में ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया एंड देन दिस ब्रेव सन ऑफ इंडिया वॉज मिस्टीरियसली मर्डर्ड इन कस्टडी एट जस्ट 36 ईयर्स ऑफ एज इन द ईयर 1943। इनकी लिखी कहानी शिकार दर्शाती है कि 1930 के दशक में उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटीज का किस तरह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था और किस तरह वहां पर रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता था, जो अंग्रेज शहर में रहने वालों को भी अनसिविलाइज्ड कहते थे, वो इन ट्राइबल कम्युनिटीज को कितना समझ पाते थे, ये एक सोचने का विषय है। इनफैक्ट हम खुद कितना जानते हैं इन ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। सच पूछो तो प्रकृति की गोद में रहने वाली इन जनजातियों का जीवन बहुत आडंबरहीन पर खुशहाल होता है। अलग अलग ट्राइब्स के अपने नियम होते हैं जो बेहद सीधे साधे होते हैं इनकी सोच की तरह। ठीक ऐसी ही सोच है इस कहानी के पात्र धनुआ की। इस उड़िया कहानी का अनुवाद किया है स्वर्गीय श्री कपिलेश्वर प्रसाद जी ने, जिन्होंने उड़ीसा में रहते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हिंदी प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और इस दौरान उड़िया साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों का बेहतरीन हिंदी अनुवाद किया। ये कहानी मुझे उनके पुत्र श्री कमल किशोर प्रसाद जी ने जब उपलब्ध करवाई तो ये भी बताया कि 1961 के आसपास इस कहानी का अनुवाद किया गया था। In 1976, based on this story, noted film director Mrinal Sen made a movie called Mrigya. Mrigya ko 1976 ka National Film Awards ka Best Feature Film Award mila tha aur Filmfare Awards ka Critics Award for Best Movie bhi mila tha. Kahin jaiyega nahi, ek bahut interesting trivia bhi aur hai. 1976 National Film Awards ke Best Actor ka award bhi इसी मूवी के लिए मिला था। कमाल की बात यह है कि ये मूवी मृग्या उस एक्टर की डेब्यू मूवी थी और वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा स्टार बना। एनी गेसेस? वेल, दैट वाज नन अदर देन मिथुन चक्रवर्ती। तो चलिए चलते हैं सीधे उड़ीसा के जंगलों में और सुनते हैं शिकार, जिसे लिखा भगवती चरण पाणिग्रही जी ने, हिंदी अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने और वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। उस क्षेत्र में धनुआ शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। उसका प्रमुख हथियार है स्वयं के हाथ से बना धनुष बाण। तीर मारते समय वो चित्त हो सो रहता और बाएं पैर को धनुष से लगाकर कान तक खींचकर तीर छोड़ता। एक मील दूर से भी तीर मारकर अपना लक्ष्य भेदता। इसी धनुष बाण से उसने अनेक हिरण, जंगली सुअर, भालू आदि मारे, चीते भी मारे हैं, किंतु बाघ सिर्फ दो ही। दो बाघ मारकर उसने डिप्टी कमिश्नर से अच्छा पुरस्कार भी पाया है। उस दिन सवेरे सवेरे वो एक अद्भुत शिकार लेकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर हाजिर हुआ। उसके एक कंधे से उसका धनुष लटक रहा है, हाथ में दो तीन तीर हैं और दूसरे कंधे पर एक कुल्हाड़ी रखी है। धनुआ को इस वेश में देख अर्दली ने पूछा, आज क्या शिकार लाया है? धनुआ के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है, वो कई बार उसके इनाम का भागीदार बन चुका है। जवाब में धनुआ ने केवल अपने पीले से दांत दिखाए। वो हंसा या बिगड़ा, जानने का कोई उपाय नहीं। वास्तव में हंसी किसे कहते हैं, धनुआ के पास उसे कभी किसी ने नहीं देखा। कभी कभी वो इसी तरह दांत दिखाया करता। वो न तो हंसी होती और न रोना, केवल दांत दिखाना ही। अर्दली ने पूछा, क्यों रे, क्या शिकार लाया है? धनुआ ने गमछे में बंधी हुई चीज को दिखाकर कहा कि आज उसने एक बड़े जानवर का शिकार किया है। अर्दली ने पूछा, बाघ? धनुआ ने फिर सिर हिलाकर नहीं कर दिया।
तो फिर चीता, भालू, जंगली सुअर?
धनुआ ना में सिर हिलाता रहा।
और नहीं तो क्या?
हल्ला गुल्ला सुनते ही साहब बंगले से बाहर निकल आए। धनुआ ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर उसी तरह दांत दिखा दिए। साहब ने शिकार देखने की उत्सुकता प्रकट की। धनुआ ने गमछे से निकाल साहब के आगे रख दिया तुरंत का कटा एक मनुष्य मुंड। साहब डर कर कदम दो कदम पीछे खिसक आए। धनुआ ने हाथ पसारा, साहब इनाम। शीघ्र मन को वश में कर साहब ने धनुआ को पुरस्कार के लिए प्रतीक्षा करने का संकेत दिया और भीतर जाकर फोन पर सशक्त पुलिस फौज को आने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त धनुआ को वश में करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। देह में असुर का बल, हाथ में धनुष बाण और कुल्हाड़ी। जिस समय हथकड़ी और बेड़ी पहनकर धनुआ को जेल में रहना पड़ा, उस समय भी वो नहीं समझ पाया कि उसे इस तरह बंद रखने का क्या मतलब है। संयोग पाते ही वो किसी किसी से इसके बारे में पूछता। कोई कहता उसे फांसी होगी, कोई कहता वो काला पानी जाएगा। क्यों? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है? कुछ न समझ पा, लोगों की बात पर वो जरा भी विश्वास न कर पाता। एक दिन डिप्टी कमिश्नर जेल इंस्पेक्शन के लिए आए। उसने उनसे ही सारा हाल कहा। उन्होंने कहा कि पहले वो बाघ भालू मारता था, इसलिए तुरंत इनाम पा जाता था। अभी उसने मनुष्य मारा है, इस बार जो इनाम मिलेगा उसके संबंध में 5-6 आदमी बैठकर राय विचार करेंगे। ये बात धनुआ को पसंद आ गई। जिस दिन उसके संबंध में विचार हुआ, धनुआ ने मन ही मन सोचा कि उसे अब इनाम मिलेगा। वो उत्साहित होकर जज के सामने सारा विवरण देने लगा।
मैंने जो गोविंद सरदार की हत्या की, उसमें मुझे कम कठिनाई नहीं हुई। कई आदमी उसकी हत्या करने की ताक में थे, किंतु एक भी सफल नहीं हुआ। गोविंद सरदार सदा मोटर में आता जाता। दूसरों की संपत्ति लूटकर उसने अपनी धन संपत्ति बढ़ाई। बड़ा शैतान आदमी था। उसने कितने ही आदमियों को मारा, कितने ही व्यक्तियों को लूटा, कितनी स्त्रियों की इज्जत ली, इसका ठिकाना नहीं। उसने धनुआ की भी सारी जमीन जायदाद लूट ली। उस दिन शाम को धनुआ की स्त्री पर बलात्कार करने पर तुला था। इतना बड़ा साहस! धनुआ को देखते ही मोटर में भागा जा रहा था। धनुआ के पंजे से निकल भागेगा। मोटर के चक्कों में तीर मारकर उन्हें रोक दिया, फिर अपनी कुल्हाड़ी से उसका सिर काटकर सीधा दौड़ा। रातों रात जंगलों के बीच एक ही सांस में 30 मील की दूरी तय करता हुआ डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर हाजिर हुआ। गोविंद सरदार ना मामूली आदमी नहीं है। उसके हाथ में हमेशा बंदूक रहती थी। बाघ और भालू के मुकाबले लोग उससे ज्यादा डरते थे, और बाघ और भालू से ज्यादा वो लोगों को नुकसान पहुंचाता था। उसे मारने के लिए इस धनुआ ने कम बुद्धि और साहस से काम नहीं लिया। कुछ साल पहले आंदोलनकारी झपट सिंह का सिर काटने के कारण डोरा को साहब ने 500 रुपए इनाम में दिए थे। झपट सिंह तो एक हिसाब से अच्छा आदमी था। उसने औरतों की इज्जत नहीं ली, किसी की जमीन जायदाद दखल नहीं की। उसने केवल सरकारी खजाना ही लूटा था और कुछ सिपाहियों को मारा था। किंतु गोविंद सरदार तो बड़ा भयंकर आदमी था। ऐसे अत्याचारी को मारने के कारण धनुआ को अधिक इनाम मिलना चाहिए। धनुआ की पूरी कहानी सुनकर सब लोग हंस पड़े और कहने लगे,
हाँ हाँ, उचित पुरस्कार दिया जाएगा।
सरकारी वकील ने कहा,
तुझे यहाँ पुरस्कार देने के लिए ही तो बुलाया गया है।
धनुआ ने इसे मजाक न समझ सच माना। वो हंसी मजाक कुछ नहीं समझता। उसकी प्रकृति अत्यंत रस शून्य जो थी। अंत में प्राण दंड का निर्णय सुनाया गया। धनुआ इसका कुछ अर्थ नहीं समझ सका। जेल को लौटाकर ले जाते समय उससे कहा गया कि इनाम पाने का दिन आ रहा है। तब तक धनुआ नहीं समझ सका था कि वो एक अपराधी है और उसे इस अपराध के लिए प्राण दंड का आदेश हुआ है। झपट सिंह को मारना और गोविंद सरदार को मारना एक ही बात नहीं है, ये वो कैसे समझे? वो नहीं समझ सका कि एक प्रशंसा का विषय है और दूसरा अभियोग। कानून के सूक्ष्म जाल में प्रवेश करने की उसकी शक्ति नहीं। वो जंगली संथाल जो ठहरा, उसने मन ही मन सोचा कि झपट सिंह को मारकर डोरा ने 500 रुपए पाए। उसे यदि उससे कम दिया जाएगा तो क्यों लेगा? सब वापस कर कहेगा,
साहब चाहे कुछ भी ना दीजिए, लेकिन डोरा से अधिक पाना मेरा हक है।
जेल की अंधेरी जन शून्य गुफा में बैठ वो कितना क्या सोचता जाता। किसी से बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता। बातचीत करने के लिए उसके मन में आग्रह भी न था। पुरस्कार पाकर केवल घर लौट जाने के लिए उसका मन छटपटा रहा था। अंत में उसकी फांसी का दिन आया। उससे पूछा गया, उसे क्या चाहिए?
मेरा इनाम, उसने कहा।
अच्छा, आज मिलेगा।
उसके सिर में काले कपड़े का खोल पहना दिया गया। धनुआ ने मन ही मन सोचा, आंख पर पट्टी बांधकर उसके हाथों में सोना चांदी उड़ेल दिए जाएंगे।
सरकार के कायदे कानून बड़े गजब के हैं, खाली वैसे थोड़े ही इनाम दिया जाएगा।
वो घर लौटकर सब कुछ दिखाएगा। उसकी स्त्री ये सब देखकर कितनी खुश होगी। अच्छा घर द्वार बनाएगा, जमीन जायदाद बढ़ाकर सुख से रहेगा।
अब तो गोविंद सरदार भी नहीं है जो लूटेगा।
वो इसी कल्पना में था कि हठात उसके गले में एक आघात सा लगा। आप सुन रहे थे शिकार। इस मूल उड़िया कहानी को लिखा भगवती चरण पानीग्रही जी ने, हिंदी अनुवाद किया प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने, और वाचन था मेरा यानी निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।